अध्याय छ सौंदर्य बोध। घनानंद के सहृदय पाठक और प्रशस्तिकार ब्रजनाथ ने इन्हें सुंदरताने के भेद को जानने वाला कहा है। इसका तात्पर्य है सौंदर्य के भेदोपभेद को जानने वाला और उसके रहस्य का पारखी। घोर रूपासक्ति के संदर्भ में हमने पहले इस तथ्य को देख लिया है कि इनके प्रेम का मूलाधार अद्भुत रूप या सौंदर्य ही है। इसके फलस्वरूप घनानंद ने सौंदर्य का अत्यंत मनोयोगपूर्ण अंकन किया है। इस दृष्टि से रीतिबद्ध ही नहीं वरन अन्य रीति मुक्त कवियों से घनानंद में पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। बोधा को विरह निवेदन से ही अवकाश नहीं मिला और आलम सौंदर्य वर्णन में बहुत कुछ रीति के ढर्रे पर ही चले हैं। ठाकुर के पास सौंदर्य के सूक्ष्म निरीक्षण की दृष्टि का पर्याप्त अभाव दिखाई देता है। जहाँ तक रीतिबद्ध कवियों का प्रश्न है, उन्होंने अनेक प्रकार के रूढ़ अपस्तुतों के माध्यम से उसे प्रायः आच्छन्न कर दिया है। उनकी दृष्टि सौंदर्य की मात्रा दिखाने पर ही अधिक रही है, उसके प्रभाव की व्यंजना की ओर उनका ध्यान कम गया है। इसके साथ ही नक्शे के परंपराबद्ध और सटीक चित्रण के कारण भी उसमें प्रभावोत्पादन की क्षमता का सर्वथा अभाव मिलता है। किंतु घनानंद की दृष्टि सौंदर्य की बाहरी नापजोक पर न जाकर उसके प्रभाव की व्यंजना पर अधिक रही है। अतः इनके सौंदर्य चित्रण में जो सूक्ष्मता और प्रभाव क्षमता मिलती है वह इस काल के अन्य कवियों में प्रायः दुर्लभ है। घनानंद के सौंदर्यांकन में एक विशेष प्रकार की तल्लीनता या गहरी लिप्तता मिलती है। ये तटस्थ या वस्तुनिष्ठ दृष्टि से उसका वर्णन मात्र नहीं करते। सहानुभूति की प्रबलता के कारण इनका दृष्टा चित्त आलम्बन की रूप माधुरी के साथ इस प्रकार घुल मिल गया है कि दोनों को एक दूसरे से अलग कर पाना प्रायः असंभव हो गया है। घनानंद के सौंदर्य चित्रण की यह विशेषता इन्हें अपने समसामयिकों से नितांत भिन्न कर देती है। सहानुभूति की ठोस भूमि पर आधारित होने के कारण इनके सौंदर्य कल्पनाएं क्रीड़ा मात्र न रहकर सौंदर्य की पुनर्रचना करती हैं। इस तथ्य को एक उदाहरण द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। अंग अंग आभासंग द्रविण सर्वित वैकाय रचि सचि लीन सौज रंगनी घनेरे की हसनि लसनि आछी बोलनि चिताओनि चाल मुरली रसाल रो मुरोम छवि हीरे की लिखी राख्यो चित्र यौ प्रवाह रूपी नयनन पय लही न परति गति उलट अनेरय की। रूप की चरित्र है घनानंद जान प्यारी अकिधौ विचित्रताई मोचित चितेरव की। यहाँ प्रिय का एक स्वानुभूत और भाव प्रवण छायांकन है। प्रेमी के चित्त ने प्रिय के अंग प्रत्यंग की छटा के साथ घुल मिलकर अपनी आंतरिक संवेदना से उसके हंसने बोलने आदि की आकर्षक क्रियाओं से युक्त और अपने अपने रोम रोम से देखी गई रसपूर्ण छवि का एक सुस्थिर चित्र अपने प्रवाह रूपी नेत्रों अर्थात निरंतर अश्रु प्रवाहित करने वाले नेत्रों में बना रखा है। यह विलक्षण वैपरीत्य एक ओर स्थिर चित्र और दूसरी ओर प्रवाह में उसका स्थित होना चित्रकार की समझ में नहीं आ रहा है। उसे दुविधा है कि प्रिय के सौंदर्यगत चरित्र की किन्हीं विशेषताओं के कारण ऐसा हुआ है या मेरे चित्रकार चित्र की विलक्षणता के कारण। वस्तुतः यहाँ चित्र और चित्रकार की एकतानता का संकेत है। इसमें प्रिय सौंदर्य प्रेमी सौंदर्य हृदय से रंजित होकर प्रस्तुत हुआ है। हृदय के राग रंग से उरेहा गया या नितांत व्यक्तिनिष्ठ चित्र पूरे रीतिकाल में अत्यंत दुर्लभ है। इस दृष्टि से घनानंद और रीतिबद्ध कवियों के अंतर को समझने के लिए बिहारी का एतद विषयक एक उदाहरण पर्याप्त सहायक हो सकता है। लिखन बैठ जाके सभी गही गही गर्भ गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। यह एक काव्य रूढ़ी पर आधारित अंकुरित यौवना नायिका के क्षण क्षण बदलने वाले सौंदर्य का चित्रण है। यहाँ भी कवि कल्पना का चमत्कार है, लेकिन यह कल्पना सहानुभूत के ठोस धरातल पर आधारित न होकर बुद्धि के क्रीड़ा विलास पर आधारित है। अतः पाठक की क्रीड़ा बुद्धि को चमत्कित करने तक ही इसकी क्षमता भी सीमित है। इसके लिए कवि ने एक चमत्कारपूर्ण रूढ़ कल्पना का सहारा लिया है। अंकुरित यौवना नायिका का यथार्थ चित्र बनाने के लिए कई चित्रकार एकत्र हो गए हैं, लेकिन जब तक वे चित्र तैयार करते हैं तब तक नायिका के सौंदर्य में अपूर्व वृद्धि हो जाती है। इसलिए सभी चतुर चित्रकार उसके सौंदर्य हंता के रूप में क्रूर प्रतीत होते हैं। वस्तुतः यहाँ सौंदर्य के आंतरिक प्रभाव का अंकन न होकर उसकी मात्रागत वृद्धि को संकेतित किया गया है। घनानंद के सौंदर्यांकन में भी चमत्कार है, लेकिन यह चमत्कार भाव विधायक है जो रूप की चरित्रगत विशेषता और भावक के साथ उसके आंतरिक संबंध को भी उद्घाटित करता है। बिहारी के चितेरे तटस्थ चित्रकार हैं, जबकि घनानंद का चित्रकार स्वयं प्रेमी है और अपनी संयोग काल की स्मृतियों का चित्र अपने मानस पटल पर अंकित करते हुए है। रूप या सौंदर्य की इस आंतरिक विशेषता को समझने के लिए एक दूसरा उदाहरण लिया जा सकता है। रावरे रूप की रीति अनूप नये नयो लागे ज्यो ज्यो निहारिय त्यो नयाखिन बाणी अनोखी अधान कहो नाही आन तिहारिय। यहाँ कवि ने रूपगत सौंदर्य की वास्तविक प्रकृति का उद्घाटन किया है, जिसे समुचित रूप से समझने के लिए संस्कृत के एक सौंदर्य मर्मी कवि के इस कथन को सामने रखा जा सकता है। क्षणे क्षणे जन्न वापमुति तदेव रूपम रमणीयता। वस्तुतः वही सौंदर्य रमणीय है जो देखने के लिए क्षण क्षण नवीनता उत्पन्न करे। नये नये लाग ज्यो ज्यो निहारिय के माध्यम से घनानंद ने उसी रमणीयता का संकेत किया है। लेकिन सौंदर्य का यह नित्य आकर्षण निरपेक्ष नहीं है, वह भोक्ता के संबंध भावना पर निर्भर करता है, जो प्रिय सौंदर्य के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं संतोष ही नहीं प्राप्त करता। दर्शक और दृश्यमान रूप दोनों के पारस्परिक संबंध पर ही रूप के स्थायी आकर्षण की यह विशेषता आधारित है। घनानंद ने अधिकांशतः एक सक्रिय भोक्ता के रूप में ही सौंदर्य का अंकन किया है, फलस्वरूप उनके चित्रणों में सौंदर्य के प्रभाव की ही अधिक व्यंजना मिलती है। ये नक्षिक वर्णन के बारीक विवरणों या रूढ़ी पर आधारित सादृश्य योजना में न जाकर दो चार आड़ी तिरछी किंतु अत्यंत भावोद्वेगक रेखाओं में बधे सौंदर्य चित्र प्रस्तुत करने में अपना आसानी नहीं रखते। एक अनूठे सौंदर्य चित्र के उदाहरण द्वारा इस तथ्य को आसानी से समझा जा सकता है। झलकय अति सुंदर आनन गौर छके दृग राज कान निछवय हसी बोलन मय छवि फूलन की बरसा उर ऊपर जातिक हय हय लटलोल कपोल कपोल करे कल कंठ बने जल जावलि द्वय अंग अंग तरंग उठय दुति की पहिरय मनोरूप अभय धर चुय। अत्यंत सुंदर गौरमुख कानों तक खींचे हुए लंबे मस्त नेत्र, हृदय पर सौंदर्य की फूलों की वर्षा करने वाली हंसी, कपोलों पर क्रीड़ा करने वाली दुचंचल लटे, सुंदर ग्रीवा में सुशोभित होने वाली दो लड़ियों की मोतीलाल और रंग प्रत्यंग से उठने वाली शोभा की तरंगे, सब मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि सौंदर्य अभी पृथ्वी पर टपक पड़ेगा। इसमें मुख नेत्र वाणी हंसी ग्रीवा मुक्तमाल आदि का उल्लेख अवश्य हुआ है, लेकिन यह चित्रण रीति कवियों के परिपाटीबद्ध नक्षिक वर्णन से पर्याप्त भिन्न है। यहाँ मुख नेत्र हंसी लट ग्रीवा आदि की रूप रंग या आकार आदि को व्यक्त करने के लिए कवि की प्रवृत्ति नहीं है, जैसा कि प्राय रीतिबद्ध कवियों ने परंपरागत उपमानों के माध्यम से किया है। यहाँ घनानंद ने सौंदर्य में निहित लावण्य और कांति के हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव का ही अंकन किया है। परिहय मान रूप अभय धर चय इस अंतिम चरण की पृष्ठभूमि के रूप में ऊपर के तीनों चरण आए हैं। अति सुंदर के द्वारा कवि ने सौंदर्य की परिपूर्णता उसके लबालब भरे होने की संकेतित किया है। इसी संदर्भ में उसके छलक का टपकने की बात सार्थक होती है। दृग के साथ छके विशेषण अत्यंत व्यंजक है, इसमें संतोष के साथ ही फैलाव की स्थिति का बोध भी होता है। छवि फूलन की बरखा पद भी अत्यंत व्यंजक है, हंसकर बोलने में किंचित आघात से प्रफुल्लित पुष्पलता से पुष्पवृष्टि का आशय संकेतित हुआ है। शरीर पर फूलों की वृष्टि आह्लादजनक होती है, जिससे हृदय पर सौंदर्य के फूलों की वृष्टि के आनंद का आसानी से अनुमान किया जा सकता है। पुष्पवृष्टि प्रसन्नता की स्थिति में ही की जाती है, इससे नायिका की प्रसन्नता का भी आभास मिलता है, फलस्वरूप उसकी हंसी का आह्लादजनक द्विगुण होकर नायक के हृदय पर पड़ता है। तीसरी पंक्ति में चंचल लटों का कपोलों पर क्रीड़ा करना भी नायक की एक विशेष भंगिमा द्योतित करता है। द्वितीय पंक्ति के हंसी बोलने में से यह स्पष्ट है कि नायक से वह हंस हंस कर बातें कर रही है, इससे लटों का चंचल होकर हिलना स्वाभाविक है। इस प्रकार कवि ने यहाँ सौंदर्य का एक अत्यंत गतिशील चित्र प्रस्तुत किया है। शरीर के विभिन्न अंगों के वर्णन की ओर भी घनानंद की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस दृष्टि से नेत्र भ्रू नासिका ग्रीवा पीठ उदर नाभि पिंडली मोरवा एड़ी पांव आदि के वर्णन विशेष उल्लेखनीय है। इस वर्णनों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि कवि की दृष्टि इन अंगों के रूप रंग की कथन की अपेक्षा प्रभाव व्यंजना की ओर अधिक है, इसलिए इनके यहाँ अंग विशेष की अपेक्षा नायिका का भाव भी ना समग्र सौंदर्य ही अधिक प्रत्यक्ष हुआ है। लाजन न पेटी चितवन भेद भाव भरे लसति ललित लोल चख तेरी छनि मय। छवि को सदन गोरो बदन रुचिर भाल रस निचुरत मीठ मृदु मुस ज्ञानि मय। दमन दमक फैलिहि मोती माल होती पिय सो लड़की प्रेम पगे बतरानि मय। आनंद की नीध जगमगात छबीलि बाल अंगन अनंग रंग ढोरी मुरी जान मय। लज्जा में लिपटी किंतु रहस्यमय भावों से परिपूर्ण चंचल तिरछे नेत्रों की चितवन छवि गृह के समान गौरमुख सुंदर ललाट रश्मि छोड़ती हुई मीठी कोमल मुस्कान प्रिय के साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप की मुद्रा में दिखाई देने वाले दांतों की आह्लादजनक आभा भावपूर्ण अंग संचालन आदि के माध्यम से नायिका के अंगों और उसकी आंगिक क्रियाओं का कवि ने अत्यंत मोहक और गतिशील चित्र प्रस्तुत किया है। वस्तुतः यह नृत्य लीन नायिका का स्वानुभूति रंजित चित्र है, जिसे सुजान आदि वेश्याओं के नृत्य के रूप में कवि ने स्वयं राज दरबार में देखा था। वीणावादन गायन नृत्य आदि की विभिन्न भंगिमाओं से उसका प्रत्यक्ष परिचय था। फलस्वरूप नृत्य की अनेक मुद्राओं के अत्यंत भावपूर्ण एवं जीवंत चित्र प्रस्तुत करने में घनानंद को पर्याप्त सफलता मिली है। इसके लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा। नी की नासा पुटकी भी उचनी उचभे भरी मुरी कई इचनी सोन क्यों हूँ मन ते मुरे रूप लाल जो बन गरुर चोट चटक सो अनखी अनोखी तान गावे लेह मेह मुर सुरे सहज हसाओ ही छवि फबति रंगीले मुख तसनन ज्योति जाल मुतिमाल सीत रुरे सरस सुजान घन आनंद भिजावय प्राण कर बील ग्रीवा जब आने मान पर ढुरे। नित्य में नासापुट की उठान गति के प्रत्यावर्तन अर्थात उसका पीछे लौटना एक तरफ रूठने की मुद्रा में अनोखी तान का महीन सुर में गायन तो दूसरी तरफ सहज मुस्कान से युक्त दंत पंक्तियों की शोभा इन सब के बीच गर्वीली ग्रीवा का मान की मुद्रा में मुड़ना आदि भावभेदी एवं सरल क्रियाएं मन और प्राण को आनंद से सिंचित कर देती हैं। यहाँ नृत्य का अत्यंत मनोरम और सजीव दृश्य प्रस्तुत हुआ है। घनानंद ग्रंथावली के अंतर्गत सुजान हित के 121, 127, 133 संख्यक छंदों में भी घनानंद ने नृत्य लीन नायिका का अत्यंत मनोहारी अंकन किया है। सौंदर्य वर्णन में घनानंद ने रीति मार्गीय कवियों की आलंकारिक पद्धति का भी कहीं कहीं सहारा लिया है। वस्तुतः रूप का प्रभाव ग्रहण करने में नेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः इसके अंकन में प्रायः सारूप या सादृश्य विधान की आवश्यकता पड़ जाती है। पीठ कटि वीण उदर नाक कान आदि के वर्णनों में कवि ने कहीं कहीं सादृश्य चमत्कार पूर्ण योजना भी की है। ऐसे पीठ को प्रीतम के प्यार के शिक्षा के लिए देने के लिए कामदेव द्वारा दी गई पट्टी उस पर पड़ी हुई वीणी को शोभा सुमेरु की संधि तटीया मान रूपी दुर्ग की घाट या फिर रसराज का प्रवाह कहना आदि एक प्रकार से परंपराभुक्त मार्ग का ही अनुगमन है, लेकिन इस प्रकार के वर्णनों में कवि ने सादृश्य द्वारा केवल बाहरी रूपाकार सामय की अपेक्षा अंगों के प्रभाव पर ही अधिक ध्यान रखा है। पगवर्णन के द्वारा एक उदाहरण इस तथ्य को अच्छी तरह समझा जा सकता है। रीति सांचे ढरिय अछमाय भरी पिंडुरिन गुराइये पेखी पगये छबि घूर नमूर मुरवान सो लोभी खरो रस झूमि खगये घन आनंद एड़नि आन मिड़े तरवान तरेंत भरे न डगये मन मेरो महाउर चावन च्यव तो वह पायन लाग न हाथ लगे। या पिंडली मोरवा ईड़ी तरवा महावर युक्त पांव का रूपाकार न देकर कवि ने उनकी आकर्षण क्षमता की अभिव्यक्ति की है। अपनी निजी अनुभूतियों के मिश्रण के कारण इनके परंपरायुक्त चित्रणों में भी प्रभाव कथन ही अधिक है, लेकिन इस प्रकार के वर्णन घनानंद की निजी विशेषता को भी उद्घाटित नहीं करते। वस्तुतः घनानंद का सौंदर्य बोध इनके लाक्षणिक विशेषणों से लक्षित किया जा सकता है जो बिना किसी सादृश्य के उसे सम्मूर्तित करते हैं। सौंदर्य के प्रति एक अछूर ललक और उसे अपने अंदर उतार लेने की अशेष अभिलाषा इनकी निजी विशेषता है। इस विशेषता के कारण घनानंद का सौंदर्य चित्रण अपने समसामयिक कवियों से भिन्न अपनी एक निजी पहचान बनाता है।